آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ आज के मुख्य समाचार में रशिया ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की और हस्तक्षेप के खिलाफ पश्चिम देशों को चेतावनी दी। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोबिल ढहने के कगार पर, जिसके कारण सैकड़ों नौकरियां खतरे में हैं। और खेल में भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज यानी 24 फरवरी से लखनऊ में होने वाला है। श्री व्लादिमीर पुतिन ने लाइव टेलीविजन पर घोषणा की है कि रशिया यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में एक विशेष सैन्य अभियान चलाएगा। जैसे ही उनका संबोधन का प्रसारण किया गया, यूक्रेन के शहरों में जोरदार विस्फोटों की कई खबरें सुनाई देने लगीं। रशिया के राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में ऑपरेशन को अधिकृत किया है और रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच संघर्ष केवल समय की बात है। बुधवार को एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि देश के हितों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और कठिन समस्याओं के बारे में बातचीत करने को तैयार हैं।
Whoever would try to stop us and further create threats to our country, to our people, should know that Russia's response will be immediate and lead you to such consequences that you have never faced in your history. We are ready for any outcome.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक के चलते पुतिन ने युद्ध की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इसे एक खतरनाक क्षण कहा। उन्होंने कहा कि यह परिषद के प्रति एक बहुत बड़ा तिरस्कार माना जा सकता है।
Unfortunately, while we've been meeting in the Security Council tonight, it appears that President Putin has ordered that last step at the exact time as we are gathered in the council seeking peace, Putin delivered a message of war in total disdain for the responsibility of this council.
आपातकालीन बैठक जारी रही। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेनी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष को अपने पद को त्यागने के लिए कहा, क्योंकि वह रशिया से हैं। सर्जे कसलित्सिया ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर और शर्तों का हवाला दिया कि केवल शांतिप्रिय राज्यों को ही सुरक्षा परिषद में प्रवेश दिया जाएगा। एक पत्रकार द्वारा रशिया के कार्यों के बारे में पूछे जाने पर राजदूत ने इसे पागलपन करार किया।
Are you serious? You want me to dissect the crazy lunatic semantics of a person whose president violates the charter, whose president declared the war, and he's playing with words, and you ask me to interpret it? It's lunacy. It's lunacy. Absolutely.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेनियन जिनके वीजा जून के अंत तक समाप्त हो जाएंगे, उन्हें अतिरिक्त 6 महीने रहने की अनुमति दी जाएगी। श्री मॉरिसन ने आज सुबह रशिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर किए, जो कल 25 फरवरी से कानून बन जाएंगे और मार्च के अंत तक लागू हो जाएंगे। श्री मॉरिसन का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के प्रधानमंत्री को यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति ऑस्ट्रेलिया की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है।
The Prime Minister was deeply grateful for two things. First of all, obviously our support for them and the rule of international law and the protections that should afford them. But equally, he was very appreciative of the support and encouragement that was being provided by the Australian people and the support for people of Ukrainian descent in Australia.
विक्टोरियन सरकार निर्माण कंपनी प्रोबिल्ड को डूबने से रोकने में मदद करने के लिए समर्थन की पेशकश कर सकती है। मेलबर्न स्थित फर्म को दक्षिण अफ्रीकी मूल कंपनी विल्सन बेली होम्स ऑफ कॉन द्वारा प्रशासन में रखा गया है, जो ऑस्ट्रेलियाई कोविड प्रतिबंधों को दोष दे रही है। प्रोबिल्ट ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों में से एक है, जो कई राज्यों में कम एक दर्जन प्रमुख परियोजनाओं का प्रबंधन करती है और इसके पतन से सैकड़ों नौकरियां जोखिम में हैं। विक्टोरियन प्रीमियर श्री डैनियल एंड्रूस का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सरकार सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।
Again, noting that it's a for-profit private company, we're always happy to try and provide support, and that can take many different forms.
कंपनी का कहना है कि वह अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा की योजना पर प्रशासक के साथ मिलकर काम कर रही है। उधर न्यू साउथ वेल्स में सोमवार को पूरी तरह से नेटवर्क बंद करने की जिम्मेदारी स्वीकार करने में विफल रहने के लिए न्यू साउथ वेल्स के विपक्षी नेता ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। ट्रेनें कम सेवा पर चल रही हैं, प्रीमियर श्री डोमिनिक पेरेटे यूनियन पर दोष डाल रहे हैं, लेकिन लेबर लीडर श्री क्रिसमिन्स का कहना है कि पर्याप्त नहीं है।
We've heard stories of nurses that have had to use $100 Uber fares to get to and from work, which is more than they'll make on their shift because of an unreliable public transport system in New South Wales. Now, many governments get in trouble because they can't make the trains run on time. This government got in trouble because they can't make the trains run at all. It is simply not good enough. Now, we're calling on the New South Wales government to accept responsibility for the chaos, tumult and turmoil that we've all suffered through over the last 72 hours, primarily so that responsibility can be taken and the same mistakes won't happen again.
परिवहन मंत्री श्री डेविड एलियट रेल, ट्रैम और बस यूनियन के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि एक नए समझौते पर लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करने का प्रयास किया जा सके। उधर न्यू साउथ वेल्स ने आज 12 और कोविड-19 मौतें और 8,271 नए मामले दर्ज किए हैं। अस्पताल में वायरस से पीड़ित 1,211 लोग हैं, जिनमें से 59 गहन देखभाल में हैं। इस बीच विक्टोरिया में 16 कोविड-19 मौतें और 6,715 नए संक्रमण सामने आए हैं। 322 लोग अस्पताल में हैं, जिनमें से 5 को वेंटिलेशन की आवश्यकता है। तस्मानिया में कोविड-19 के 853 नए मामले दर्ज किए हैं, जो बुधवार के फरवरी 23 तारीख के 842 संक्रमणों से थोड़े ज़्यादा हैं। अस्पताल में 12 लोग वायरस की वजह से भर्ती हैं, जिनमें से 3 का इलाज विशेष रूप से कोविड-19 लक्षणों के लिए किया जा रहा है। 2 मरीज गहन देखभाल में हैं। भारतीय अभिनेता चेतन कुमार को एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आलोचना करने वाले एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस कृष्णा दीक्षित फिलहाल स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं। कुमार का ट्वीट 2020 में उनके द्वारा किए गए एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट का रीट्वीट है, जहां अभिनेता ने उस समय एक कथित बलात्कार मामले के बारे में जज की टिप्पणी की निंदा की थी। पोस्ट में उन्होंने जस्टिस दीक्षित की टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला का यह बयान कि अपराध के बाद वह थक कर सो गई थी, एक भारतीय महिला के लिए अनुचित है। उनके मुताबिक तबाह होने पर हमारी महिलाएं इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। श्री कुमार की पत्नी मेघा ने कहा कि किसी ने भी उनकी गिरफ्तारी के बारे में परिवार को सूचित नहीं किया और उनका पति घर से गायब था और उनका फोन भी बंद था। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटों में 15,102 कोविड-19 मामले और 278 मौतें दर्ज की। देश का सक्रिय केस लोड 1,64,522 है, जबकि रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने का दर 92.42% है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार भारत में अब तक लगभग 176 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 टीके की खुराक मिल चुकी है। अब मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज भी 72 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53 रुपये और 58 पैसे है। खेल समाचार में भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है। पहला मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आज भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे खेला जाएगा। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने व कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका का सामना करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के बाकी 2 मैच 26 फरवरी और 27 फरवरी को धर्मशाला में खेले जाएंगे। श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। टेस्ट सीरीज की शुरुआत मोहाली में होगी। पहला मुकाबला 4 मार्च से 8 मार्च तक खेला जाएगा। इसके बाद बेंगलुरु में दूसरा और अंतिम टेस्ट 12 से 16 मार्च तक आयोजित होगा। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल ज्यादातर धूप खिली रहेगी। वहां का न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 34 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में बादल छटेंगे और आसमान साफ होगा। वहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम तापमान 29 तक जाएगा। मेलबर्न में बादल छाए रहेंगे और यहाँ का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 23 डिग्री रहेगा। कैनबरा में हल्की बरसात पड़ने के आसार। वहाँ का न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम तापमान 25 तक जाएगा। सिडनी में भी हल्की बारिश की संभावना। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 27 डिग्री। ब्रिस्बेन में बारिश होने की आशंका। वहाँ का न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 23 डिग्री। डार्विन में 1-2 बौछार पड़ने के साथ तूफान की आशंका। वहां का न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 31 डिग्री तक रहेगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल मौसम साफ रहेगा और धूप रहेगी। वहां का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 26 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।